نحمدهم ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سلاما وكلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بغیر کسی تنظیم کے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کا اپنے نکاح ہو چکا اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا اپنے نکاح نہیں ہے. اپنے نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ جس سے نہیں تھا وہ رشتہ جوڑ گئے اور اب سمجھنے کے بعد اب وہ رشتہ جو بہت دور کا تھا یا بالکل شادی نہیں وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ قریب کا اور کوئی رشتہ نہیں. اب ہونے کے بعد جوہر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اب ہوا ہے اس کی حفاظت کرے اور زبان سے ایسی کوئی بات نہ لائے جس سے اس کا اب کا ذمہ دار ٹوٹ جائے. یہ شوہر کی سب سے بڑی ذمہ داری. اپنے نکاح کی حفاظت شوہر کے اوپر لازمی اور اپنے نکاح کو توڑنا لفظ طلاق کے ذریعے اسلام میں بہت کچھ تھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شوہر نکاح کو طلاق کے ذریعے توڑتا ہے اس رشتے کو شکنا دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم تو آسانی کے ساتھ اپنی 10 گرام کی زبان کو ہلا کر لفظ طلاق بول کر اور عقد کو توڑ دیتے ہیں. ہمارا دل نہیں ہلتا, ہمارے گھر کے کھڑکی دروازے نہیں ہلتے, زمین نہیں ہلتی, لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرش الہی ہلنے لگتا ہے. طلاق اتنی بری چیز ہے اس لیے کہ اس سے ایک رشتہ جو تھا وہ ٹوٹتا ہے. میاں اور بیوی جو قریب تھے وہ دور ہو جاتے ہیں. یہ ہے عقد. اور اسی طرح ایک اسلامی دنیا میں لفظ ہے عقیدہ. عقیدہ اور عقد یہ دونوں ایک ہی را میٹیریل سے بنے. را میٹیریل جس چیز سے کسی چیز کو بنایا جائے وہ را میٹیریل ہوتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں کچھ حروف ہوتے ہیں جس سے ایک لفظ اور ورڈ بنایا جاتا ہے. اس کا را میٹیریل کیا ہے؟ عین, قاف اور دال. یہ 3 حرف ہیں جس سے عقد بنا ہے. عین بھی اس میں ہے, قاف بھی ہے और दाल भी है, समझ रहे हैं आप करीब? ये ग्रामर की बात बहुत आसान करके समझा रहा हूं। इसी तरह से अकीदा, इसमें भी ऐन, काफ और दाल, ये रॉ मटेरियल है। और अकीदे में ये या जो है ये एक जाहिद है। आप कहें कि उसकी सूरत क्या होगी? आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग का रॉ मटेरियल क्या होता है? नहीं मालूम? हाँ बताइए। सीमेंट, लोहा और कंकर, आरसीसी, जिसका ये मजमूआ है। आरसीसी की जो बिल्डिंग बनती है ये असल बिल्डिंग की का रॉ मटेरियल है, लेकिन ये रंग रोगन और ये पेंटिंग ये रॉ मटेरियल नहीं है, समझ गए? इसी तरह ऐन, काफ, दाल ये रॉ मटेरियल है और उसमें या जो है ये रॉ मटेरियल नहीं, एक एक्स्ट्रा चीज है। लेकिन ऐन, काफ, दाल अकीदे में भी है और अक्द में भी है। अब अरबी ग्रामर ये है कि जिस रॉ मटेरियल से एक दो चार लफ्ज बने, उन सब में माना के एतबार से वही बड़ा इत्तेहाद होता है। जैसे अक्द नाजुक है वैसे ही अकीदा नाजुक है। अक्द के बाद जबान को संभालना जरूरी है। अगर ये जबान फिसली और तलाक का लफ्ज निकला तो अकीदा अक्द जो है चकना चूर हो जाता है। इसी तरह से अकीदा, ये हमारा गुलाम हुसैन, वो इस्लाम के रिश्ते में जुड़ा नहीं था, लेकिन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये दूर था, काबा से दूर था, कुरान से दूर था, अल्लाह से दूर था, नबी से दूर था। और जैसे ही इस्लाम का अकीदा कबूल कर लिया, अब ये अल्लाह से करीब हो गया, नबी से करीब हो गया, काबे से करीब हो गया, कुरान से करीब हो गया, नमाज से करीब हो गया, रोजे से करीब हो गया, अब ये सबसे रिश्तेदारी जुड़ गई इसकी, रिश्ते में बंध गया। दूर वाला अकीदे के बाद करीब हो गया, जैसे दूर वाली और दूर वाला अक्द के बाद करीब हो गया, अब उससे ज्यादा कोई कुर्बत नहीं है। अकीदा दूर को नजदीक कर देता है और इस अकीदे की अब जिंदगी भर मुसलमान को हिफाजत करनी। जिस तरह अक्द के खिलाफ खिलाफ है, अगर ये जबान से निकला तो अक्द टूट जाता है, इसी तरह अकीदे वाले की जबान फिसली तो अकीदा खराब होता है। वो जबान कैसे है कि अकीदा के खिलाफ नबी की बेअदबी अगर जबान से निकली तो अकीदा चकनाचूर हो जाता है। जैसे तलाक का लफ्ज निकला तो बीवी दूर हो जाती है, अब उसको हाथ नहीं लगा सकता है, उससे बात नहीं कर सकता है। अगर अक्द खत्म होने के बाद बीवी को बीवी की तरह रखे, नहीं समझे, तो खाना खिला रहा है, अच्छी साड़ी पहना रहा है, बंगला बना रहा है, तो सब लोग इस बंगला बनाने को, उसको खाना खिलाने और साड़ी पहनाने को बुरा समझेंगे। अब ये इसकी बीवी नहीं है, उसके साथ बीवी जैसा ताल्लुक रखना ये हराम है, नहीं समझे? बीवी का अक्द टूट गया फिर बीवी बना के रखता है, उससे बड़ा फरादी और मुजरिम कोई भी नहीं। इसी तरह अकीदा खराब हो गया फिर नमाज पढ़ रहा, नहीं समझे? عقیدہ خراب ہو گیا پھر روزہ رکھ رہا, عقیدہ خراب ہو رہا پھر حج کرنے جا رہا, عقیدہ خراب ہو گیا رسول ہمارے ہیں پھر کہہ رہا ہے اللہ ہمارا ہے ہم توحید کو مانتے ہیں, عقد خراب ہونے کے بعد لا کہے یہ میری ہے. ارے بے ایمان کیسے میری بول رہا ہے, عیاش ہے اس کو کمرے میں لے کے جا رہا ہے, حرام کار ہے یہ. فتوا لگائے گی کہ نہیں, شریعت فتوا لگائے گی. بہت نازک مسئلہ کہہ رہا ہوں, عقد ختم ہونے کے بعد بیوی کو بیوی کی طرح رکھنا حرام, جہنم کا کام. اسی طرح عقیدہ خراب ہونے کے بعد اسلام کی باتوں پر عمل کرنا حرام, یہ بھی جہنم میں لے جائے گا. نماز جہنم میں لے جائے گی, روزہ جہنم میں لے جائے گا, اور حج جہنم میں لے جائے گا, اس لیے کہ عقیدہ خراب. آپ کہیں گے آپ کیا بول رہے ہیں, میں وہ بول رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. قرآن فرماتا ہے عاملۃن ناصبۃن تصلا نارن حامیہ. جو بے ایمان ہو جاتا ہے وہ عاملۃن کتنا بھی عمل کرے گا, ناصبۃن کتنی بھی محنت کرے گا. جیسا طلاق ہونے کے بعد جب نکاح خراب ہو جاتا ہے کتنا بھی گال کو چمارے گا, مائی چال. ابے یہ محبت نہیں ہے, بے حیائی ہے. اسی طرح عقیدہ خراب ہونے کے بعد قرآن کو چوم رہا ہے, بے حیائی ہے. احرام پہن کر لبیک کہہ رہا ہے, بے حیائی ہے. تبلیغ کر رہا ہے, بے حیائی ہے. محنت کر رہا ہے, بے حیائی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, الفاظ سخت ہیں میرے مولا کا. یہ عاملۃن عمل کرے گا, ناصبۃن خوب محنت کرے گا. محنت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں, تم تو سوتے رہتے ہو, ان کی سلیپر ایک ایک جوڑی گھس جاتی ہے ایک مہینے میں. کہاں جا رہے اللہ شاہ کا کام کرنے, کہاں جا رہے دین کا کام کرنے جا رہے. سلام علیکم, ابھی چلیے. ارے ایسا زمانہ جوان تو پھسل جاتا ہے, بڈھا بھی پھسل جاتا ہے. ایسی حالت, اور قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے, عمل بھی بہت ہوگا, محنت بھی بہت ہوگی, دن رات محنت. گھر سے باہر نہ بال بچوں کی خبر, نہ کاروبار کی خبر. کہاں جا رہے ہیں؟ دین کے لیے محنت کرنے جا رہے ہیں. رب فرماتا ہے یہ دو کام بہت کریں گے جن کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. عاملۃن عمل بہت کریں گے, ناصبۃن محنت بہت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تصلا نارن حامیہ, قیامت میں میں ان کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں دھسا دوں. یاد داخل کرنے کا نہیں فرما رہا, تسلا فرما رہا ہے. پکڑ پکڑ کے فرشتے ٹیٹوا دھسائیں گے. آگ میں لکڑی ایک تو ڈالی جاتی ہے, سمجھے, ایسے ڈال دی جائے ہلو سے, اور ایک آگ میں لکڑی یوں 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 کر کے ڈالی جائے. دونوں میں فرق ہے کہ فرق ہے. سب تو جہنم میں داخل کیے جائیں گے, اور یہ ایمان اور عقیدہ لانے کے بعد نبی کی گستاخی جو کریں گے, ان کا حال یہ ہے کہ صرف یوں نہیں ڈالے جائیں گے, فرشتے پکڑ پکڑ کے یہ رگڑ گھس کریں گے. ہاں, اور جتنا آگ پر کسی چیز کو رگڑا جائے تکلیف زیادہ ہوگی نا. قرآن فرماتا ہے عاملۃن ناصبۃن تصلا نارن حامیہ, جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں رکڑ دھس کر کے اور انہیں داخل کیا جائے گا. है कोई माई का लाड जो इस कुरान को चैलेंज कर सके? मौला अमल था, मेहनत थी, जहन्नम में क्यों डाल रहा है? अल्लाह फरमाएगा अकीदा लाया था और फिर नबी की बेअदबी किया था, इसलिए इस बेहया को जहन्नम में डाला जा रहा है। इसे कोई रोक नहीं सकता। शरीयत का कानून कानून है मियां। और जो मुनाफिक बन जाता है देखने में मुसलमान और अंदर से बेईमान, उसके बारे में कुरान ऐलान फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल असफल मिनन नार। मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में रहे। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? हदीस में आया है कि दरके अश्वल, जो सबसे नीचे का तबका है, दर्जा है जहन्नम का, उसमें जहन्नम के ऊपर वाले जितने दर्जे हैं उसमें जो हीट और पावर होगा, इसका हजारों गुना पावर उसमें होगा नीचे तबके में। यानी जहन्नम का पावर हाउस होगा। हुजूर फरमाते हैं जब जहन्नम की हीट का टेम्परेचर डाउन होगा और उसकी गर्मी जब कुछ कम होने लगेगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा कि उस दर के असफल का ढक्कन थोड़ा सा उठा दो। तो नीचे का ढक्कन जो उठाया जाएगा तो पूरे जहन्नम का पावर फुल हो जाएगा। पूरा पूरा पावर, हीट का टेम्परेचर बिल्कुल हाईएस्ट हो जाएगा। तो वो जहन्नम का तबका जिसको रब ने ढांक कर रखा है, जिससे जहन्नम को हीट पहुंचाई जाती है, वो किसके लिए है? अबू जहल के लिए नहीं है, अबू लहब के लिए नहीं है, उतबा और शैबा के लिए नहीं है, तो खुले खुले काफिर थे। वो उन लोगों के लिए है जो मस्जिदों में नबी की बेअदबी करके अल्लाह हाथ में तस्बीह लेकर के यूं आते हैं, कहां अल्लाह साहब का काम करने आते जाओ, फंसते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। ये जो करने वाले भूमि, उनके लिए रब फरमाता है कि ये मुनाफिक मस्जिद नबवी में नबी के पीछे पांच वक्त नमाज पढ़ते थे, लेकिन इनको मैं अजाब दूंगा कहां? यार ये आप सबको घबरा रहे, पांच फीट का आदमी इतना बड़ा बिच्छू आया। अरे तुम तो कहो इधर आओ, हम फिकर रहा तुम्हारी, ये प्रैक्टिकल बताया जा रहा, सुनने से बड़े कीड़े से नहीं। अरे वो शैतान भी कीड़े का अब्बा आ जाए तब भी लाहौल पढ़ करके उस पर ऐसी फायरिंग करता है कि चारों तरफ गिर जाता है। और अगर बदअकीदा आता है तो अपने अकीदे के तहफ्फुज के लिए या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है तो पीछे भाग जाता है। मेरे आला हजरत ने फरमाया है दिल पे कंधा हो तेरा नाम के वो दुस्ते रजीम उल्टे ही पांव फिरे देख के तोहरा तेरा। या गौस, आप ऐसा कर्म कीजिए कि आपका नाम हमारे दिल के गेट पर लिखा हुआ, दिल से कंधा हो तेरा नाम, आपका नाम अगर कंधा है खुदा हुआ लिखा हुआ है, पेंटिंग नहीं, पेंटिंग से तो छूट जाता है पेंट, और जो चीज पत्थर पर लिख दिया जाता है उसको कुतर कुतर करके वो मिटता नहीं है, वो बाकी रहता है। आला हजरत दुआ करते हैं वो पेंटिंग वाला हमको लिखा नहीं चाहिए, कंधा हो दिल पे कंधा हो तेरा नाम के वो दुष्ट रजीम। दुष्ट कहते हैं चोर को, रजीम कहते हैं भगाए हुए मर्दूत को। शैतान को दुष्ट रजीम कहा गया है। दिल पे कंधा हो तेरा नाम के वो दुष्ट रजीम जो जन्नत से भगाया गया है, उल्टे ही पांव फिरे देख के तो बराते आए कि चलो इसके दिल में वसवसा डाले, और गेट पर या घोषणा लिखा है आला हजरत फरमाते हैं तो वो देख करके फौरन ही भागेगा, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो दरके असफल जहन्नम का पावर हाउस है, वो लोग जो नबी के पीछे पांच वक्त नमाज पढ़ते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत है और मुनाफिक पीछे खड़ा हुआ है। यहाँ रामगुंडम की मस्जिद का मुसल्ली नहीं है, मस्जिद नबवी का मुसल्ली है और इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ रहा है। रब फरमाता ये मेरे नबी का गुस्ताख है, ये नबी के पीछे नमाज पढ़े या किसी के पीछे नमाज पढ़े आमिलतुन अमल होगा, लेकिन जहन्नम में डालूंगा इसलिए कि नबी का गुस्ताख। इसलिए तहफ्फुज़े अकायद की जरूरत है, जिस तरह से अकीदे अक्ल की जरूरत हिफाजत की जरूरत है, इससे ज्यादा अकीदे की हिफाजत की जरूरत है। अगर अक्ल खत्म हुआ तो बीबी छूटी और अकीदा खत्म हुआ तो अल्लाह रसूल छूटे, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यहाँ तो दूसरी बीवी कर सकता है, वहाँ जाने के बाद फिर ईमान ला ही नहीं सकता। खुद अये हदीस यूमिनून, अब इसके बाद कौन सी बात आएगी जिस पर तुम ईमान लाओगे? जो आना था आ चुका, अब किसी चीज का इंतजार मत करो। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये तहफ्फुज़े अकायद कॉन्फ्रेंस बहुत बर वक्त मनाई गई है और ये वक्त की एक अहम जरूरत है। जो चीज, जो कीमती चीज होती है, खतरे के वक्त उसी की हिफाजत होती है। जब खतरा न हो तब तो आदमी हिफाजत की तरफ इतना मुतवज्जा नहीं होता, और जब खतरा हो जाए तो हर कीमती चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी हर एक पर ज्यादा बढ़ जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप अपने घर में अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए बहुत सी चीजों को बसाए हुए हैं, और घर में अगर आग लग गई और ऐसी भयानक आग लगी कि घर की हर चीज जल जाने का खतरा है, चावल रखा है बासमती जल जाएगा, बीवी की शादी का जोड़ा कीमती है जरी वाला जल जाएगा, ये नए नोट गुलाबी कलर के बंडल रखे हैं जल जाएंगे, ये सब खतरा हो गया। और एक कमरे में आपका 6 महीने का बेटा भी सो रहा है और आग लगी है, अब आप बचाएंगे किसको पहले, किसकी हिफाजत करेंगे? क्यों? क्यों पैसा नहीं है आपके काम का? बीवी का शलवार काम का नहीं है? घर की सब चीजें तो सब आपके काम की, लेकिन खतरे के वक्त में किसकी हिफाजत पहले की जाएगी? जो सबसे ज्यादा लाडली चीज हो, सबसे प्यारी हो, वो आपका बच्चा है, आंखों की ठंडक है, दिल का सुरूर है। एक घर में सो रहा है, आग लग गई, शोर मच गया, बचाओ बचाओ। बाप की शफकत बेचैन हो गई, शोले उड़ रहे हैं, उसने शोलों की परवाह नहीं की, उसी ने बचते बचाते घुस गया, उसका हाथ जल गया, लेकिन अपने सोते हुए बेटे को कलेजे से लगाकर बाहर निकल करके हंस रहा है, मैं कामयाब बन गया, इसलिए कि सबसे कीमती चीज को मैंने बचा दी। बोलो ये उसका कारनामा काबिले तारीफ है कि नहीं? और अगर वो बच्चे को जलने देता, गुलाबी नोट को बचाने की फिक्र करता, बासमती चावल के बोरे को कमर पर लाद लाद कर बाहर रखता और बोलता मैंने बचा लिया, अगर बेवकूफ तेरी जिंदगी आ बुढ़ापे का सहारा, तेरी खानदान का निशान, तेरे दिल का चैन जल रहा है और तू खुश इस पर हो रहा है मेरे बासमती चावल बच गए, मेरी बीवी की सलवार बच गई, मेरी चीज बच गई, اور جو اصل قیمتی تھی تو انہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی. یہ انتہائی بدتماش انسان ہوگا. ارے سب سے پہلے حفاظت قیمتی چیز کی جاتی ہے. اسی طرح اب آپ کے ارد و گرد شوگر اٹھنے لگے جب تمہاری زندگی کو ختم ہو جائے, ایسے وقت میں تمہیں بچانا ہے تو کیا بچاؤ گے؟ سب سے پیاری چیز تمہارا ایمان ہے, پہلے اس کو بچانو پھر سب سے. بولے میں نے نماز بچا لی, نماز والے بولے نماز بچا لی, حج کر لیا, یہ کر لیا. ارے ایمان تو جل گیا, گیا باسمتی چاول بچانے کے لیے ایمان کو جلا دیا. یہ ایسا ہے, اس سب سے بڑا ظلم یہ ہے. اس لیے امام احمد رضا نے اعلان کیا کہ اے لوگوں کہ جان ماں, امام احمد رضا نے یہ اعلان کیا, کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروں دو جہاں نہیں. ایمان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا, یہ ہے مسلک اعلی حضرت. لیکن ایمان کو گوار, ایمان کو خراب ہونے دینا, اس کو گوارا کرنا, یہ ایمان جہنم کو موڑ لینا ہے. اے لوگوں, تحفظ عقائد کانفرنس جگہ جگہ کر کے اس آنکھ میں ایمان کی اہمیت, عقیدے کی اہمیت اور حکم رسول محبت کو لوگوں کو بتانا ہے. اگر لوگ سمجھ گئے, خدا کی قسم قبر میں ہم بوڑھوں کو یاد کرو گے, بوڑھوں کو یاد کرو گے, کافی سال میں خون ایک طرف پلا رہا تھا. اے لوگوں, اٹھو اٹھو, اس جلتی ہوئی آگ میں کود کر کے حب رسول کی دولت کو بچا دو. ایک صحابیہ بوڑھیا میدان احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہوئی تھی, دندان مبارک ظالموں کے ضرب سے ٹوٹ, مدینے میں خبر پہنچ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ادھر جنتا مدینے میں افواہ پھیل گئی کہ سرکار شہید ہو گئے. ایک بڑھیا بے چینی کے ساتھ گھر سے نکلی اور احد کی طرف جا رہی تھی. ادھر سے کچھ لوگ میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں, پوچھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ ارے اس کو مت دیکھو بھائی, وہ وہاں گڑبڑ کر رہا تھا. اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ ارے اس کو مت دیکھو بھائی, وہ وہاں گڑبڑ کر رہا تھا, وہ اوپر جا رہا ہے. کسی نے کہا تیرے شوہر شہید ہو گئے؟ کہا میں شوہر تو نہیں, میں آئی ہوں مصطفیٰ کو پوچھنے. پھر کسی نے کہا تمہارے بھائی شہید ہو گئے؟ بولے مجھے بھائی سے مطلب نہیں ہے, مجھے تو اپنے دل کی دھڑکن کو مصطفیٰ, ان کی خیریت بتاؤ. بھتیجہ شہید ہو گیا, بھتیجہ پوچھنے نہیں آئی ہو, اللہ کے رسول کی خیریت پوچھنے آئی ہو. ایک بڑھیا کے ایمان کی توانائی دیکھو. سب نے بتایا تمہارا کنبا لٹ گیا, کنبا نہیں مصطفیٰ. اگر سلامت ہے تو میں سلامت ہوں, میری آخرت سلامت ہے. ایک ضعیفہ عورت کے ایمان کی توانائی کو دیکھو. وہ میدانے احد کی طرف جاتے ہوئے خوش ہو کر کے واپس آ رہی ہے, نہ اس کے آنکھوں میں آنسو ہے, صرف ایک خبر لینے گئی تھی مصطفیٰ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. شہادت کی خبر غلط ہے, یہی اس کے دل کا چھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ایمان کتنا اشتہم اور کتنا مضبوط تھا. وہاں کوئی کسی کی کوئی مجال نہ تھی کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکے, بڑے سائلنٹ لوگ تھے. لیکن جب منافقوں کی تبلیغ بڑھی تو رب ارشاد فرماتا ہے ہم العدو فاحذرہم فاعلم انما یوفک
اے صحابہ ان پتلی کے پتلی
صحابہ سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ صدیق اکبر کے ایمان پر کسی دسیسہ کاری کا اثر ہو ہی نہیں سکتا تھا. عمر فاروق اتنے ٹائٹ تھے کہ ان پر کسی منافق کی منافقانہ چال کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. عثمان غنی اتنے سخت تھے کہ ان پر کسی کی دولت کا اثر ہو ہی نہیں سکتا, اور حیدر کرار تو اپنی ذوالفقار لے کر تیار ہی رہتے تھے, ان کو کون بہکا سکتا تھا. ارے جب صحابیات کے ایمان اتنے اشتان تھے تو صحابہ کے ایمان کتنا مضبوط تھا. لیکن منافق جماعت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا برتاؤ بھی رکھتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافق تمہارے پکے دشمن ہیں, ان کی صحبتوں سے بچتے ہو. صحابہ کو قرآن نصیحت کر رہا ہے کہ منافق کی صحبت میں مت بیٹھنا, اور اگر کبھی بھولے سے بیٹھ بھی گئے فلا تقود بعد الذکرا مع القوم الظالمین, تو اے لوگوں ان ظالموں کی مجلس میں کبھی بھولے سے بیٹھ گئے اور یاد آ جائے کہ یہ تو ان کا جلسہ ہے تو فوراً چلے جانا. یہ قرآن کی آیت ہے, حافظ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں, فلا تقود بعد الذکرا مع القوم الظالمین, ان ظالموں کے ساتھ کبھی بھی بیٹھنا نہیں. اگر کبھی بھولے سے انجانے انجانے میں تم بیٹھ بھی گئے تو جیسے ہی یاد آ جائے یا کوئی یاد دلا تو منافق ہے. تو اللہ صحابہ کو فرماتا ہے فوراً وہاں سے چلے جانا. یہ صحابہ کرام کو قرآن تاکید کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ بہت جائیں, اس لیے کہ ان کے مضبوط ایمان کو دیکھ کر کے آنے والی قوم سمجھ گئے جب اتنے مضبوط لوگوں کو گمراہوں کی مجلس میں جانے سے قرآن منع کیا ہے تو آج کے زمانے میں اس کا حکم کتنا سخت ہو جائے گا, اور کیسے کوئی جا کر کے نہیں. ہم تو جاتے ہیں اگر مولانا ابو الحسن صاحب سمجھائیں, مت جانا ان کے پاس, ان کی صحبت میں مت جانا, ان سے دوستی مت کرنا. بولے مولانا زمانے ہم چاہتے ہیں ان کے پاس جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیں اور باقی ہم ان کو سمجھا دیں. اچھی اچھی لینے جاتے ہیں, بری بری چھوڑ دیں. واہ واہ, بڑے نقاد اور بڑے پرکھنے والے ہو گئے کہ اچھی اچھی چیز کیا ہے اور بری بری چیز کیا ہے. میں اس کی ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک طرح کولڈ ڈرنک کا بنایا, 80 لیٹر ڈنچا کمپنی کا پیور دودھ 70 روپے لیٹر والا ڈالا اور اس میں 10 کلو شکر ڈال دی, 12 بوٹل ہمدرد لیبارٹی کا روح افزا ڈال دیا, کاجو کشمش ڈرائی فروٹ ڈال کر کے بہترین آپ نے دودھ کولڈ ڈرنک تیار کی, اور بہترین اس میں صاف ستھری برف اس میں ڈال کر کے ٹھنڈا کر کے رکھا. بارات آئے گی بیٹی کی اور سب کو پلایا جائے گا. بہت پیسہ خرچ کیا. محلے کے بڑے میاں آئے, نواسے کو گود میں لیے ہوئے تھے, اتفاق سے چڈی پہنانا بھول گئے تھے. آ کر پوچھتے بیٹا, براتیوں کے استقبال کے لیے, خاطر توازوں کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا, بابا میں نے دودھ کولڈ ڈرنک پہلے بنائی ہے, ناشتے کے وقت یہ دیا جائے گا. مجھے کیسا بنایا؟ بولے یہ بنایا, ڈھکن چھانک رہی ہے. اتنے میں نواسے نے اتنا قدرتی نش کو پہنے نہیں تھا. بڑے میاں نے بڑے ہوشیاری سے فوراً کر کے اس میں 2-4 گرام لیا,
सिर्फ एक सुई के झांके के बराबर लोगों ने देखा कि उस कलाम में इतना ही दिशा पेशाब का एक सुई के नाके के बराबर इतने बड़े ग्राम में घुस गए। अब सबने कहा हो गया खराब, हो गया खराब। अब मैं लोगों से कहूंगा इसमें कि अच्छा अच्छा पी जाओ, पूरा पूरा छोड़ दो, पूरा बिखरी गया है, पूरा पूरा इसमें से निकालेंगे, अच्छा अच्छा अलग करेंगे, वो तो सब मिल गया है, पूरा ग्राम हो गया दरबार डाल बना दी। अगर आप तुम्हारी नकल पर स्थिति नहीं है कि एक सुई के नाके के बुराई को 80 लीटर दूध से निकाल कर अलग करोगे तो ये दिल के ग्राम में मोहब्बत रसूल का शरबत रब ने अपने कर्म से अता फरमाया है, वहाँ बहादियत का एक छींटा भी चला जाएगा, उसे तुम कभी भी अलग नहीं कर सकते। इसलिए कुरान फरमाता है हम लघू ये तुम्हारे दुश्मन है, इनकी सोहबतों से दूर रहो, कहीं एक छीटा चला गया तो सब आमिल नाशिबतुन तसला नारुल हामिया बन गए। अकीदे की हिफाजत ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये मेरी तकरीर नहीं है, तफहीम है। तकरीर तो ये हजरात करते हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि अगर इतना बड़ा मजमा है, मेरा ख्याल है कि सभी समझ गए होंगे कि अब हम अकीदे को सबसे अहम और समझेंगे। इस लगी हुई आग में सबसे पहले हम अपने अकीदे को बचाएंगे। अकीदा बचेगा, सजदा बचाओ, रोजा बचाओ, हज बचाओ, आग लगी है बेटा चावल बचाओ, बीवी का शलवार बचाओ, कोई नहीं मना करेगा। आप पहले कीमती चीज की हिफाजत कर लो, अब हर चीज की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी। अब पीड़े को बचा लिया, अब हर चीज को बचाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इस जमाने में भी अपने लाडले प्यारे अकीदे और ईमान को बचा चुका है, बचाया है ना। जो काम तो इसका इतना सॉलिड है, इतना परफेक्ट है, एक तो अकीदा और दूसरी चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर और तौहीद। ईमान भी महफूज है, नबी की अज़मत का जज्बा भी महफूज है। सब हो गुजरता अशीला एक पॉइंट रह गया है, यानी सुबह शाम अल्लाह की इबादत करो, बाकी बयान करो। इसमें अगर तुम परफेक्ट बन गए तो बदअकीदों का कुछ भी जना सकते, वो आते क्या है आपका अकीदा बचाने के लिए नहीं है। चलिए हम आपका अकीदा बचाएंगे, हम सबसे दावत देंगे, वो कहने का तो कलमा कभी नहीं करेंगे। ये लोग तुमको जानते हैं कि इनके पास नबी का बहुत बड़ा सरमाया मौजूद है, इनका अकीदा महफूज है। अब वो एक ही दरवाजा उनके लिए खुला है नमाज का। देखिए लोग मोहल्ले में नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिदें खाली हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह के बड़े बड़े सांप काटे थे, बड़े बड़े बच्चे बचे थे, उसको बनाई। जैसे हमारे कब्र के सबसे बड़े ठेकेदार ये बिच्छू कटवाते हैं, सांप कटवाते हैं, नमाजी पड़ोगे तो सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे। उनसे पूछो कि अरे तू कभी गया था अपने अब्बा के कब्र में कि देख के आया है, किसके कब्र में घुसा था भाई, बखन चोर है क्या तू, कब्र में बिच्छू आएंगे सांप आएंगे देखा है। मुझे तो हुजूर के लोग के लिए बता रहा हूँ, हुजूर की बात को कौन झुटला सकता है, हम तो सुनते हमारे यही उनका अंदाज होता है, हुजूर ने बताया हुजूर की बात गलत नहीं होती, इसलिए नमाज पढ़ो। बेईमान यही तो झगड़ा है, वो कहता है दीवार के पीछे की खबर नहीं तो मनो मिट्टी के नीचे की खबर किसने दी, कब्र में क्या हो रहा है, कभी दादा की कब्र में गया था, अब्बा की कब्र में घुसा था, बोले नहीं हुजूर ने बताया। यही तो हम कहते हैं कि जो कोई नहीं जानता वो हुजूर जानते हैं।
जहाँ तुमको फंसाना है ना, डराना है, तो फिर हुजूर की बात है। और फिर भैया उनको तो दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, तो उनसे पूछो कि तुमको कैसे खबर हो गई कि हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तुमको कैसे खबर हुई। तो आने बाशाए आपने लगेगा मेरे दोस्त नमाज पढ़, ताकि न बिच्छू का डर दिलाया जाए, न सांप से डसवाया जाए, न मुनकर नकीर के सवालों जवाब का तुम्हारे ऊपर खौफ दिलाया जाए। तू तो दो काम बहुत अच्छा कर रहा है, अकीदा मजबूत है, मोहब्बत रसूल का जज्बा मजबूत है। अब नमाजी बन जा, एक एक बच्चा नमाजी बन जा, अब उनका दरवाजा खुद ही बंद हो जाएगा। अब क्या करने आएंगे, नमाज पढ़वाने आएंगे? तुम बोल जाएंगे मैं तो खुद नमाज हूँ। चल आप डांटोगे फिर कभी नहीं आएगा। और जब सुन्नियों की नमाज, सुन्नी नमाजियों से मस्जिदें भरी रहेंगी, तो बाहर जो सहन में जूते चप्पल कितने होंगे? अगर 10 नमाजी हैं तो 20 होंगे, 100 नमाजी हैं तो बाहर ही देख लेंगे कि मस्जिद में नमाजी कितने हैं।
सुभान अल्लाह।
समझे? अंदर कितने हैं वो बाद में देखेंगे, ये बाहर वाले जो सर पर पड़ने वाले ये कितने हैं ये पहले देखेंगे, और उल्टे ही पांव भागेंगे कि भाई ये मस्जिद तो पहले से भरी हुई है, हमारे लिए जगह नहीं है कि हम अपना पोटला बिस्तरा यहाँ पर रखें, दंड का मंडल रखें, और रात को हो हो सोने के लिए टांग फैला के सोए। मस्जिद मुसुन्नियों आबाद कर दो, ताकि इनको जगह न मिल सके, और तुम्हारी ये कमजोर जो हैसियत है, वीक पॉइंट है, ये भी स्ट्रांग बन जाए। हम तो हमें किसी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुन्नी की मस्जिद भी बन जाएगी, बच जाएगी, और सुन्नी के बच्चे भी महफूज हो जाएंगे। नमाज पढ़ोगे, अमल करोगे? आज खड़े होकर के मैं मेहनत कर रहा हूँ, समझ गए? 80 साल में इतनी देर तक खड़े होकर के तकलीफ कोई कर ले, मैं अभी 1 घंटा बोल सकता हूँ अपने पीर के चलते में, सही कह रहा हूँ? पता नहीं अभी कितनी देर हो गई, 45 मिनट हो गए, 45 मिनट यूं ही खड़े हुए के बोल रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ, अरे कुर्सी हम तो आए थे, कुर्सी खुद ही पढ़ते अल्लाह उसके सदके में हमें नूर की कुर्सियों पर बिठाएगा। हदीस में है, हम इस कुर्सी के खातिर नहीं लड़ते, हम तो वहाँ नूर की कुर्सियों पर बैठेंगे इंशाअल्लाह। अकीदा महफूज कर लो सुन्नियों, ऐ तेलंगाना के रहने वालों, अपनी हैसियत को समझो, तुम पुराने मुसलमान, हमारा फर्म जो है नया नहीं है। नाम कब बदला जाता है? एक फर्म है, एक फर्म अलग हुई, वही नाम बदलेगी ना, पुरानी फर्म का तो वही नाम रहेगा, फिर उससे एक निकली तो उसका नाम अलग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं जाए, एक नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हमारा तो अहले सुन्नत का रजिस्ट्रेशन हुजूर के जमाने से है ही है। अब अलग अलग फर्म निकल रही है, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला किया है इसलिए निकल दिया गया, तो अब वो अलग अहले हदीस, ओहो नया नई फर्म, तबलीगी जमात नई फर्म, अहमदी जमात, अहमदी समझे, कादियानी वो अपने को अहमदी कहते हैं, शिया जमात, ये सब नाम क्यों बदले? इसलिए कि ये फर्म से निकलते गए, हम इनमें से निकले, नाम बदल दिया। हमारा पुराना रजिस्ट्रेशन जो 4 यार के जरिए जनाबे मुस्तफा के ऑफिस में हो चुका है, वो ये है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाएर राशिदीन, ऐ लोगों मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करो। हम तो सुन्नी हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन मदीने में महफूज। तो इस पुरानी माल खरीदना हो तो इस पुरानी फर्म से खरीदो, ये बिल्कुल नकली नहीं है, सब असली है। और ये जो है नकली वाले इसलिए तो अलग अलग हो गए, नाम बदल गए, और इनका लेबल जो है ये बड़ा अच्छा रहता, चमकदार होता है। जो लेबल लगाया जाता है पुरानी फर्म का, पुराने अंदाज का लेबल होता है। और आज तो नई फर्म पर जो कार्टून निकलते हैं इसमें शानदार शानदार लेबल लगाते हैं, खाली लेबल देख करके लोग कहते हैं ये अच्छा है ये अच्छा है। मैं कहता हूँ लेबल मत देखो, अंदर का माल देखो। डालडा का लेबल कितना अच्छा है, डालडा समझे वनस्पति घी, इतना उसको खोल करके देखो तो देखने में भी इस असली घी से ज्यादा व्हाइटनेस मालूम होगा। बेस नंबर लिखा रहेगा, एक्सपायरी डेट लिखी रहेगी, लेबल पर नाम रहेगा, लेकिन जिसके पास भैंस है ओरिजिनल घी निकलता है उसका कभी बेस नंबर देखा किसी ने, उसका नाम देखा? असली घी का नाम नहीं, वो तो ओरिजिनल निकलता है, पहले से आया है, रब ने उसको जब से भैंस पैदा किया है जब से असली घी है। ये डालडा खजूर छाप तो बाद में आया है, और उसको खाओगे ना दो दिन बिरयानी खा लो तो तीसरे दिन छी छी खू खू, अरे क्या हो गया, बोले बिरयानी खा लिया। असली घी रोज खा तो ये माशाअल्लाह माडी सीना पूरा टाइट हो जाएगा। और डालडा वनस्पति तीन दिन दाल खा ले तो जुकाम सर्दी, और ज्यादा खाएगा तो टीबी हो जाएगा। नकली खाओगे सस्ता जरूर मिलेगा, उस पर लेवल अच्छा जरूर होगा लेकिन अंदर जाकर नुकसान पहुंचाएगा। और असली खाएगा तो जिंदगी भर खा, ऐ नौजवान असली घी खाएगा ना तो जिम खाना जाना छूट जाएगा। आजकल नौजवान जिम जाता है और जर्सी पहन करके और माड़ी ये देखा था, क्या इसको बोलते हैं दन, ये माड़ी ये सीना ऐसे चलता है, सोने की चेन पहन करके ऐसा लगता है कि पूरे राम गुंडम को खा जाएगा। नमाज एक नहीं पढ़ता, नमाज एक नहीं पढ़ता, खाली लोगों को डराने जा रहा है। अरे नमाजी बन जा, कमजोर होगा तो शैतान तुझसे डरेगा। लोगों को डरा करके क्या कैद करता है, ए नौजवान आ इस्लामी लिबास पहन, रब की बारगाह में झुक, मुस्तफा की अजमत का चिराग जला ले, गौसे आजम की अजमत का झंडा लेकर और दुनिया में चल तो जितने शैतान वो भी लेकर भागेंगे, अड्डा भी भागेगा चड्डा भी भागेगा। इसलिए स्टांग बन जाओ जाहिर में भी बातिन में। ये तहफ्फुज़े अकायद कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है, बनोगे नमाजी
इंशाअल्लाह।
ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सुन्नी बनोगे, सुन्नी तो है ही हो, अकीदा तो महफूज है, अजमत मुस्तफ़ा महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो तुम्हारे माँ बाप ने और आगरा तेलंगाना के माहौल में जो तुमको अता फरमाया है उसको कलेजे से लगाओ, और इसकी हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत का ताला खरीद लो। मसलके आला हजरत का ताला खरीद करके दिल की तिजोरी में लगा लो कि कोई इसको तोड़ ना सके। चाबी अपने पास रखे, अपने चाबी कहाँ से लाएंगे, अरे यही ताजिर शरिया की मोहब्बत चाबी है। इसलिए अपनी हिफाजत कर लो, तिजोरी तैयार है, ताला लगाने की जरूरत है, उसमें करेंसी मौजूद है, डाकू कितना भी घूमते रहेंगे इस ताले को खोल नहीं सकते। अल्लाह ताला तुमसे मुतालबा फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाही व रसूलही, ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। तो ईमान लाने का मतलब ये है जो तुमको बुजुर्गों से ईमान मिला है उसकी हिफाजत करते रहो करते रहो। बोलो नमाज पढ़ोगे, सुन्नी बनकर तो हाई वो मैं ही पूछता,
हाथ उठा, मैं हाथ नहीं उठा, हाथ उठा करवा देता।
اللہ تمہارے سر کو ایسے ہی بلند
کرے،
تمہارے حوصلوں کو بھی
بھر دو، بھر دو مسجدوں کو. اللہ نے تم کو جو امانت ایمان اور محبت رسول دی ہے، نماز اس کی حفاظت کرنے والی ہے، کوئی تم کو لوٹ نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ.